అన్యం స్తనకాలకూటం విధం శాపాయత్ అప్రసాద్దే లేవే గతిం హాత్రుచితం తతో కన్నా దయాలు శరణం మృగే. और जिनको मरने के लिए नियत से मैया का वेश मनाया, किसने सुना है कैसी थी वो? बच्चों को पकड़ करके चूस लेती थी उनका रक्त, जैसे गन्ना चूसते हैं ऐसे चूस लेती थी उनका रक्त, चूस लेती थी, रुधिर पान करती थी, उनको खा जाती थी. महाभयानक रुधिराशिना ऐसी राक्षसी स्तन में काल कुछ बीस लगा करके गई कृष्ण को मारने के लिए, अपने भैया कंस को प्रसन्न करने के लिए. जब वहां पर पहुंची बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया, मैया जैसी बन गई और नंद भवन में प्रवेश किया. यशोदा ने कहा, अरे ये तो यही तो इसकी मैया है, मैं इसकी मैया नहीं. मैया कभी अधिक आदर जो करे ना तो उसको डाइन समझो. क्या कहा मैंने? मां प्यार करते किंतु मां से भी अधिक कोई यदि प्यार करता है समझे ये डाइन है, मैया नहीं है. तो वैसा उसने किया, कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिए, बेटा बेटा, और गोदी में लेकर के तन में सदूत था नहीं, कालकूट भी एक हाथ कृष्ण के सिर के नीचे यहां रखा बच्चे, और दूसरे को अपने जैसे पंप करते हैं ऐसे दबाया अपने स्तन को. कृष्ण ने आंख बंद कर दिए, बोले तुम मैया मेरी बन करके आई है, मैं तुझे कैसे मारू, तुम्हारे स्तन को सुंदर गति दूंगा. क्या उन्होंने किया? बीस तो पान किया नहीं, उसके प्राणों को भी पान कर गए. कृष्ण का ये प्रतिज्ञा है, कृष्ण जरा टेढ़े हैं त्रिभंग रूप में, कृष्ण किसी के अंदर में नहीं जाते, यदि चले जाएंगे निकलेंगे नहीं वहां से. लाभ कोशिश करो, जब तुम मेरी मैया बन करके आई है तो तुम्हें मैया ही बनाऊंगा. इसने उसका प्राण तक खींच लिया और उसके शरीर को नष्ट करके उसके अंदर में जो सुंदर स्वरूप है आत्मा का, उससे गोलोक वृंदावन में उसको भेज दिया और मैया जैसी गति उसको दे दी. ऐसा कौन सा मूर्ख है जो ऐसे दयालु प्रभु का भजन न करे? ऐसा कौन जगत में मूर्ख है? वो केवल पशु हत्यारा है जो अपने आत्मा का हनन करता है, हत्या करता है, वही केवल एक व्यक्ति होगा. अन्यथा दूसरा ऐसा कोई पुलिस जगत में मूर्ख, ऐसा आत्मघाती नहीं होगा जो कृष्ण का भजन न करे. इसलिए सभी को भगवान का भजन करना चाहिए. इसके बाद में झट अपने पिताजी के पास में लौट आए और कहा, जी आपने किस पुस्तक में ये सब लिखा? उन्होंने कहा, जी मैंने श्रीमद् भागवत समाधि में मैंने इसको देखा, कृष्ण का लीला चरित्र, और समाधि में देखा और देख करके उसको मैं एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है श्रीमद् भागवत. जस्या वही सुनियमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपपद्य दे पुंसा शोक मोह भया. ऐसा ग्रंथ लिखा जो जगत में अज्ञानी हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते, ऐसे अबोध लोगों के लिए मैंने ये श्रीमद् भागवत की रचना की है, जिनको श्रवण करने से शोक मोह भय सब दूर हो जाता है और कृष्ण की प्रेम हृदय में उगल जाता है, चला आता है. अनायास ही परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक इसका श्रवण किया और कोई कुछ नहीं किया साधन भजन. देखो गोलोक की गति ऊंची हो गई, कृष्ण की सेवा को उन्होंने प्राप्त किया. इसे श्रीमद् भागवत का केवल यदि पूरा नहीं हुआ एक अध्याय भी नहीं हुआ, एक श्लोक भी यदि श्रवण किया, एक श्लोक भी यदि नहीं श्रवण कर सके, आधा श्लोक वो भी नहीं हुआ, तो एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, उसमें से एक चरण भी यदि तुमने सुन लिया तो सारा भागवत का फल तुमको मिलेगा. ऐसा ये श्रीमद् भागवत में है. इसलिए भारतवर्ष में सर्वत्र जहां पर भक्त लोग होते हैं भागवत की बड़ी महिमा है, इसका श्रवण कीर्तन होता है. इसलिए मैं श्रीमद् भागवत के कुछ भाग को आप लोगों को सुनाना चाहता हूं. एक श्लोक में ही तब 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीना लग सकता है, किंतु हम चाहेंगे इसका कुछ सारांश आप लोगों को कुछ दे सकें. ये परीक्षित महाराज जी को आप लोग जानते हो, अर्जुन के पुत्र के पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, बड़े प्रतापी थे. एक दिन ये कहीं जा रहे थे, चलते चलते इनको बड़ी प्यास लगी. प्यास लगने पर पास में एक आश्रम था, समीक ऋषि का आश्रम, वो उस आश्रम में पहुंचे. कब तक समय 15 मिनट और मैं लूंगा, इसके बाद में कल इसके बाद की कथाएं मैं बतलाऊंगा, अभी 15 मिनट और आप लूंगा। तो जा रहे थे कहीं, बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास लगने के बाद उन्होंने देखा आश्रम पासी में है एक ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं। जाकर के उपस्थित हुए और बोले मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। किंतु आश्रम ऋषि की आंखें नहीं खुली। उन्होंने सोचा ये बेकार का साधु है, मैं बुला रहा हूं या नहीं बोल रहा, शायद ये समझ रहा हूं कि मैं त्यागी वैष्णव हूं संत हूं और ये गृहस्थ है, इसे बातचीत नहीं करना चाहता, इसलिए ध्यान लगा करके बैठे हूं। अच्छा, मैं इस देश का राजा और ये ऐसा मेरे साथ में व्यवहार कर रहा, ठीक है, इसको पुरस्कार देना चाहिए। क्या पुरस्कार? देखा एक सांप पड़ा हुआ था, उस अपने धनुष के नुक से उठाया, उसके गले में 3 बार लगा दिया, ये 3 लड़का हार है, तुम इसी के जोगे। फिर वहां से चले, सोचने लगे यदि ये सच्चा संत हुआ तब तो भाई बड़ा मुश्किल है, हमारा तो ये जीवन ही नष्ट हो जाएगा, हमने ये गलती की, क्यों ऐसा किया, प्यास के मारे हमें छटपटा रहा था, पानी नहीं दिया इसलिए, किंतु ये अच्छा काम नहीं, हो सकता है कि हमारा सर्वनाश न हो जाए। और इतने में उनका लड़का छोटा 5 वर्ष का खेल रहा था बच्चों के साथ एक नदी के किनारे पास ही में, किसी ने जाकर कह दिया तुम्हारे बाप के पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, बस रोता हुआ वहां से देखा जैसे सब कुछ सांप लगा, बड़ा क्रोधित हो गया छोटा सा बच्चा नंगा मैं सुखदेव गोस्वामी जैसा, और उसने पानी उठाया आत्मन किया प्रक्षण किया और कहा जी पानी ले लिया और लेकर के ब्रह्म सूत्र उसके लेकर के हाथों में बोले यदि मैं सचमुच में ब्राह्मण हूं तो मैं इनको अभी संपाद देता जिसने हमारे पिता के गले में सर्प लगाया, 7वें दिन तक्षक इसको डकेगा डसेगा और ये मरेगा, कोई नहीं बचा सके। अका करके खूब जोर से रोता हुआ अपने पिताजी की गोदी में बैठ गया, उसके रोने से पिताजी का समाधि खुल गया। अरे बेटा क्यों कौन रो रहा है? ओह तुमने परीक्षित को अभी संपात दिया, वो जान गए, अभी संपात दिया, ये बहुत बुरा काम किया, ब्राह्मण लोग बड़े सहिष्णु होते हैं किसी को अभी संपात नहीं देते है? तू छोटा सा बालक अभी ब्राह्मण नहीं बना, अभी तेरे अंदर में क्षत्रिय का खून खोल रहा है, इसे तुम ब्राह्मण नहीं, ठीक नहीं काम। महाराज परीक्षित के जाने के बाद में ये पृथ्वी उलट जाएगी, समझ रखो, स्त्रियों को कोई आदर नहीं करेगा, उनका सभी लोग अनादर करने लगेंगे, और बेटा बाप को नहीं मानेगा, मैया को नहीं मानेगा, धर्म भी नष्ट हो जाएगा, धर्मात्मा राजा था उसको तुमने ऐसा भी संपाद किया। उन्होंने साथी एक बच्चे को जो उनके यहाँ पढ़ता था उसने जाओ परीक्षित महाराज को सुना दो, जैसे वो 7 दिन के अंदर में मरेगा, एक पक्ष एक आएगा तक्षक सांप उसे डसे, वो जाकर के परीक्षित महाराज जी से कहा। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सोचा मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये भजन करूं संसार को छोड़ दूं, बहुत दिन राज्य किया, मेरे लड़के पोते ये सब हो गए हैं, अब मुझको चाहिए था भगवान का भजन करना किंतु मैं नहीं कर सका, आज भगवान स्वयं अभिसंपात के रूप में हमारे पास में आए हैं, आज मैं संसार को छोड़ दूंगा और भगवान का आज ही से भजन करना आरंभ करूंगा। वो गंगा के किनारे पहुंचे और पहुंच करके खाना पीना छोड़ दिया, 7 दिन तक अब न पानी पिएंगे न खाएंगे न कुछ, और पहले से प्यासे थे ही, गंगा के किनारे बैठे गंगा की तरफ में मुख रख करके, और इतने में लाखों जितने ऋषि लोग थे नारद जी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित व्यास जी कपिल इत्यादि जितने भी विश्वामित्र गौतम कभी हवि अंतरिक्षित पलायन याज्ञवल्क्य जितने भी ऋषि भागवत के थे सब वहां पर उपस्थित हुए। भगवान का दर्शन करना बहुत कठिन है, तो अभी उनका संभव है किंतु ऐसे भक्तों का दर्शन संभव पर नहीं है। ये लाखों ये कहां से आ गए एक मिनट में, जान लिए वो सर्वज्ञ हैं, आज के जैसे वो नहीं, आजकल साधु का वेश बना करके भी दंड भी लेकर के क्यों खाने पीने में और भोगों में व्यस्त रहते हैं लोग, ऐसा नहीं, बड़े अनुभवी ब्रह्म तत्व को जानने वाले, चाहे तो जन्म को भी रोक दें मृत्यु को भी रोक दें, नर जीव यदि काट जाए तो बस आदमी जीवित भी मर जाएगा, मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा, ऐसे उनमें शक्ति है। इसलिए नारद इत्यादि सभी पराशर सभी लोग वहां पर उपस्थित हुए। उनका एक प्रश्न था, अभी जो मर रहा है अभी तुरंत मृत्यु से यापा पड़ा हुआ है, एक मिनट अब चल बाकी है, उसको क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न ये। और दूसरा, आज न कल न परसों न बरसों जरूर मरेंगे, जितने लोगों ने जन्म लिया है उनको जरूर मरना है, उनको क्या करना चाहिए? दो प्रश्न हुआ। पहला प्रश्न, जो अभी तुरंत मरने वाला है उनके लिए क्या करनीय है? और दूसरे, जो आज न कल न परसों न बरसों 100 वर्ष के बाद तो जरूर मरेंगे, जिसने जन्म लिया है, जात से ही ध्रुव जन्म ध्रुव मृत्यु, उन जिनका जन्म है उनका मरण भी, तो उनके लिए क्या करना है? किसी ने कहा जे दान करो, किसी ने कहा जे पुण्य करो, किसी ने कहा जे योगाभ्यास करो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा जे तुम ये कहो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ऐसा मैं ब्रह्म हूं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इतने में सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के जैसे लड़के, नंगे, बिल्कुल नंगे, तेज भीतर से निकल रहा था, स्त्रियां कुछ थी उनको देख करके धूल लगा रही थी, छिड़क रही थी, कुछ बच्चे पत्थर लेकर के छोटे छोटे उन पर खेल रहे थे, मार रहे थे और हंस रहे थे। जब वो निकट में आए सभास्थली पर, नारद और पराशर हजारों लाखों ऋषि लोग उठ करके खड़े हो गए, परिचित माना हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और उस बच्चे को लेकर के सिंहासन पर व्यास आश्रम पर बैठा दिया, बैठो व्यास आसन पर, अब इनसे पूछो। तब परीक्षित महाराज जी हाथ जोड़ करके बोले, हमारा जो दो प्रश्न है आप उसका उत्तर दीजिए। पहला, जो अभी मरने वाले हैं और जो आज नहीं तो कल मरेंगे, परसों मरेंगे, बरसों मरेंगे, उनके लिए क्या करनीय है? इसी के बीच में उन्होंने पूछा, कृष्ण किस लिए जगत में आए? जन्म लिया मथुरा में, फिर गोकुल में पले पोसे कैसे वहां पर गए, वहां पर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, फिर वहां से लौट करके मथुरा में आकर के कंस का वध किया और फिर द्वारका में चले गए, वहां पर कौन कौन सी लीलाएं की, ये सब का आप वर्णन करें। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का आरंभ किया और उनको 7 दिन बैठ करके सुनो, तब उन्होंने सुनना आरंभ किया, सभी लोग सुने, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी जितने लोग थे सभी लोग बड़े प्रसन्न होकर के सुनने लग गए, सभी लोग एकदम भक्त हो गए कुछ दिनों के बाद में। अब इसी की कथा हम कल कुछ कहेंगे, आज यहीं तक रहे। गौर प्रमानंदे भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रीमती राधिका की जय, श्रीमद् भागवत की जय, धर्म की जय।